ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। रीडिंग फ्रॉम श्रीमद्भागवत महापुराण कैंटो 5 चैप्टर 18 टेक्स्ट 38। सो अश्विन कृष्ण पुर शैल स्पीक इन हिंदी और इंग्लिश। आपका क्या बताएं, मेरे पास एक हिंदी का पुस्तक और इंग्लिश का पुस्तक था, लेकिन ये तो अभी इंग्लिश का है, तो क्या उसे इंग्लिश में पढ़ूं हिंदी में बोलूं या क्या? नहीं मेरा आपका जो सिस्टम है वही फलो करूं, जैसे सुनने वाले होंगे इसे हमको बोलना पड़ेगा। हमको क्या है ना, अच्छा बुरा ऑडियंस में ज्यादा कौन है, हिंदी वाले हैं तो फिर आप इंग्लिश कैसे? ये हिंदी का है, भगवते अकुपाराय सर्वसत्त्वगुण विशेषणाय अनुपलक्षितस्थानाय नमो वर्ष्मणे नमो भूम्ने नमो नमः अवस्थानाय नमस्ते। ओम नमो भगवते अकुपाराय सर्वसत्त्वगुण विशेषणाय अनुपलक्षितस्थानाय नमो वर्ष्मणे नमो भूम्ने नमो नमोवस्थानाय नमस्ते। ओम नमो भगवते अकुपाराय सर्वसत्त्वगुण विशेषणाय अनुपलक्षितस्थानाय नमो वर्ष्मणे नमो भूम्ने नमो नमोवस्थानाय नमस्ते। कोई उच्चारण करें, शब्दार्थ ओम। अच्छा अच्छा शब्दार्थ ओम हे ईश्वर, नमः नमस्कार है भगवते श्री भगवान को, अकुपाराय कुर्म के रूप में, सर्वसत्व गुण विशेषणाय जिसका रूप शुद्ध सत्वमय है, अनुपलक्षित स्थान आय आपको जिनका स्थान अनिश्चित है, नमः नमस्कार है वर्षमणे काल की मर्यादा के बाहर आपको, नमः नमः बारंबार नमस्कार है अवस्थानाय सर्व आधार, नमः नमस्कार है ते आपको। अनुवाद एवं तात्पर्य भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, श्रील प्रभुपाद की अनुवाद। हे प्रभु, कच्छप स्वरूप आपको मेरा सादर नमस्कार है। आप समस्त दिव्य गुणों के आगार है, आप भौतिकता से रहित तथा परम सत्व में स्थित है। आप जल में विचरण करते हैं किंतु कोई आपका पता नहीं लगा पाता, अतः मैं आपको नमस्कार करता हूं। अपनी दिव्य स्थिति के कारण आप भूत वर्तमान तथा भविष्य से बंधे नहीं रहते, आप सर्वत्र सर्वाधार रूप में उपस्थित रहते हैं, अतः मैं बारंबार आपको नमस्कार करता हूं। तात्पर्य, ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि गोलोक एव निवसति अखिलात्म भूतः, आध्यात्मिक जगत में सबसे ऊपर के लोक गोलोक में भगवान सदैव रहते हैं, साथ ही वे सर्वव्यापी हैं। ऐसा विरोधाभास केवल श्री भगवान पर ही लागू हो सकता है जो समस्त ऐश्वर्य से पूर्ण है। भगवान की सर्वव्यापकता की पुष्टि श्री भगवद्गीता से होती है, जहां श्री कृष्ण कहते हैं ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक प्राणी के हृदय में स्थित है। भगवद्गीता में ही अन्यत्र वे कहते हैं सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्त स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च, मैं सब प्राणियों के हृदय में बैठा हूं और मुझसे ही स्मृति ज्ञान और विस्मृति होती है। अतः यद्यपि भगवान सर्वत्र विद्यमान है किंतु वे सामान्य नेत्रों से नहीं दिखे जा सकते हैं, जैसा कि आर्यमा कहते हैं। श्री भगवान अनुपलक्षित स्थान है, अर्थात उनको कोई ढूंढ नहीं सकता, यही श्री भगवान की महानता है। ओम अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानान्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामेहं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश श्रीयुतं साग्र रघुनाथं नितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री श्री राधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्री विशाखानितं स नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अभी हम लोग श्रीमद् भागवत में ये जिस प्रकरण पढ़ रहे हैं, इसमें सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को इस भुवन कोश के जो अनेक स्थान है उसके परिचय देते हुए जम्बूद्वीप का वर्णन करते हैं। एक द्वीप है जम्बूद्वीप, आइलैंड है, उसके अंदर छोटे छोटे सब आइलैंड, छोटे छोटे उपद्वीप है और आठ, और उसमें से भारतवर्ष एक है जिस भारतवर्ष में हम रहते हैं, उसके आसपास और छोटे छोटे आठ और उपद्वीप है। और प्रत्येक उपद्वीप में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि भगवान के एक विशेष अवतार अधिदेव के रूप में अधिष्ठित हैं, और वहां के अधिवासियों के जो मुख्य नेता है वो उनको विशेष रूप से अर्चना करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं, पूजा करते हैं। ये शिक्षा हमको प्राप्त होता है कि संपूर्ण ब्रह्मांड में केवल इस भारत वर्ष में नहीं, और भारत वर्ष में भी इस बंबई नगरी में नहीं, इस बंबई नगरी में भी इस जुहू क्षेत्र में नहीं, इस जुहू क्षेत्र में भी राधा रासबिहारी मंदिर में हम लोग में नहीं, संपूर्ण ब्रह्मांड के प्रत्येक दीप उपदीप में भी श्री भगवान अपने विशेष विशेष रूप में अधिष्ठित हैं। और जो उस अधिवासियों के सबसे बड़ी विद्वान, सबसे बड़ी समझदार, उनके नेता, उन लोग उनको विशेष रूप से पूजा करते हैं भगवान की। वास्तविक भागवत में जब प्रथम स्कंद में नवेसारण्य में अनेक अनेक ऋषि, हजार संख्या के ऋषि कलिजुग के आगमन पर चर्चा कर रहे थे कि क्या किया जाए, और श्री सुत गोस्वामी से बैठकर चर्चा किए, और बड़े भुरिणी भुरिकर्माणी शास्त्राणी अनेक प्रकार के शास्त्र आदि के विचार विमर्श करके निचोड़ करके फाइनल कंक्लूजन ये निकाले थे कि उनको बोले थे हमको सार बताइए। तो सुत गोस्वामी जो साक्षात सुखदेव गोस्वामी के शिष्य हैं और सारे वेद पुराण वैदिक ज्ञान में विशेष प्रवेश था जिसका, उन्होंने हर प्रकार से समझ बूझ करके ये निष्कर्ष देते हैं। तस्मात, संस्कृत में तस्मात शब्द कहते हैं अतएव, माने जो सारे बुद्धि विचार विमर्श करने के बाद में जो निष्कर्ष निकलता है अतएव ये करना चाहिए। तो बोलते तस्मात एकेन मनसा भगवान सप्तांगपति ही, इसलिए अतएव और कुछ नहीं करना चाहिए हम सबको, एकाग्रचित होकर के मन लगा करके भगवान सप्तांगपति, इस श्लोक में आया है विशेष सत्व गुण विशेषा आया, जो सत्वगुण में रहते हैं हमेशा और भक्तों के जो नेता है भगवान सप्तांगपति ही, उन भगवान को श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च ध्येय पूज्यश्च नित्यदा, ये चार काम करने के लिए बताए। ये फाइनल निष्कर्ष है, अंतिम निर्णय है क्या करना चाहिए प्रत्येक लोग के लिए। भगवान गीता में भी कहते हैं अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम, भगवान कहते हैं अर्जुन को, अर्जुन ये जो लोक है वो अनित्य है, रहने वाला ज्यादा दिन नहीं है, जो लोक ही नहीं रहेगा हम कहां से, लोक में रहने वाला हम कहां से रहेंगे, रहेंगे तो नहीं हम लोग ज्यादा दिन, ये तो निश्चित है, लेकिन रह कर सुख भी नहीं पा सकते हैं। असुखम लोकम, ये लोक में हर प्रकार का व्यवस्था दुख देने के लिए किया गया है, सुख नहीं है। हम लोग बेवकूफ है जो यहां आकर के जीना भी चाहते हैं और सुखी भी होना चाहते हैं, दो ही चीज इधर नहीं मिलता, यहां मरना होगा और दुख भोग भोग कर मरना होगा, ये व्यवस्था इधर है। तो भगवान कहते हैं ये अनित्यम और असुखम लोकम इमं प्राप्य, जब किसी सौभाग्य दुर्भाग्य से इस लोक को आप प्राप्त कर आ चुके हैं तो क्या करना है, अब आ चुके हैं सरकार अब क्या करें, न एक ही कार्य है क्या, भजस्व माम, मेरे भजन करो। ये भगवद गीता के नवम अध्याय के जो सबसे परम गुह्य ज्ञान योग है उसमें भगवान 33 वर्ष में कहते हैं। तो अर्जुन पूछेगा अच्छा यही केवल करना है, एक ही काम, हाँ एक ही काम है, इसी दुनिया पर आकर के और कुछ करना ही नहीं, केवल एक ही काम करना है। अच्छा केवल आपको भजन, तो कैसे आपको भजन करिए तो पता नहीं कैसे करें। तो भगवान तुरंत सादा सीधा आर्डर देते हैं मन मना भव मद भक्त भव मद याजी मत नमस्कुरु, वही चार काम इधर भी कहते हैं। इसमें भी जो निष्कर्ष उसमें भी निष्कर्ष, निष्कर्ष केवल शब्द में अंतर है, शब्दांतर है, अर्थांतर नहीं है। और पूरी भागवत महापुराण में हम जितने स्तुति देखते हैं, बड़े बड़े महापुरुष जितने भी स्तुति किए हैं भगवान की, सभी का यही निष्कर्ष निचोड़ निकालते हैं, वही चार काम, श्रोतव्य कीर्तितव्यस्य धेय पूज्यस्य नित्यदा। अलग अलग भाषा में बात यही कहते हैं और कुछ नहीं, वो करना केवल यही है। और हम ये भी देखते हैं इस हिरण्यमय वर्ष में जो जितने अधिवासी हैं उनके नेता श्री आर्यमा, आर्यमा जो कभी कभी जमराज के पोस्ट भी संभालते हैं, धर्मराज की पोस्ट भी संभालते हैं, इतने बड़े समझदार जो पितृलोक के अधिपति हैं और जरूरत पड़ पर धर्मराज की पदवी पर रहते हैं, इतने बड़ी पहुंचे हुए व्यक्ति, समझदार व्यक्ति, उन्होंने जब हिरण्यमय वर्ष में जाते हैं तो सबको, अपने जितने आदिवासी है सबको साथ में लेकर के वहां के जो भगवत विग्रह अवस्थान करते हैं श्री कुर्म भगवान, उनको विशेष रूप से स्तुति करते हैं। तो इससे यह पता चलता है, तो प्रत्येक जीव को जो वास्तविक बुद्धिमान है, समझदार है, उसको केवल उसके जीवन में अगर शक्ति सामर्थ्य जो भी कुछ है बुद्धि प्रति लगाकर एक ही कार्य करना चाहे, वो है भगवान की स्तुति। और कर कुछ नहीं सकते हमने, केवल आशा भर कर सकते हैं, कुछ भी हमारा इच्छा पूरा नहीं हो सकता। तो इसलिए भगवान को हाथ जोड़कर प्रार्थना कर ले बस, और हो क्या सकता हमसे, कुछ नहीं कर सकते। तो इतना तो कम से कम कर सकते हैं, इसके लिए भगवान हमको शरीर दिए, हाथ दिए, मुंह दिए, जिह्वा दिए, इत्यादि दिए हैं, यही कार्य के लिए दिए हैं। इसी को छोड़ करके और दूसरा कुछ भी करे तो जैसे श्रावण मास में वो मेढक जो टरटराते हैं ना, और सांप को बुलाता है कि मैं यहां हूं आकर मुझे खा लो, काल को बुलाता है, ठीक यही काम करता है। दिन रात 24 घंटा जो हमारे शरीर को लेकर के, जिह्वा को लेकर हम जो भी कुछ कार्य करते हैं, केवल उस काल को स्वागत करते हैं, आओ हमको खाओ। तो संपूर्ण ब्रह्मांड में जितने बड़े बड़े विद्वान समझदार व्यक्ति हैं, सभी यही कार्य करते हैं। वो इसी धरती पर जितने बड़े बड़े आचार्य, जितने बड़े बड़े बुद्धिमान विद्वान पुरुष ऋषि महर्षिगण आए हैं, सभी भी एक मत में, एक साथ में यही करते हैं और बोलते भी हैं। भगवान भगवत गीता में कहते हैं, मैं पुरुषोत्तम हूं, यो माम एव असम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम्। जो मुझे असम्मूढ़, मूढ़ मन मूर्ख, सम्मूढ़ मतलब अच्छा तरह से मूर्ख, असम्मूढ़ मतलब जो अच्छा तरह से मूर्ख नहीं है, जो अच्छे व्यक्ति है, यो माम एव असम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम्। जो मुझे पुरुषोत्तम करके जो अच्छे व्यक्ति अच्छा तरह से जान लिया, तो जान लिया तो फिर क्या करेगा, अब क्या करना है, हम समझ लिया कि पुरुषोत्तम है, तब फिर उसके सामने एक ही कार्य रह जाता, क्या, स सर्वविद, वो सब कुछ जान जाता है, सो सर्वविद, फिर कुछ बाकी नहीं रहता जानने के लिए। भगवान कहते हैं जो मुझे पुरुषोत्तम करके जान लिया, बस वो सर्वज्ञ है, वो सर्वविद, सर्वविद हो गया तब और कुछ नहीं करना है ना, करेगा क्या, करेगा स सर्वविद भजते माम सर्वभावेन भारत, मेरा भजन करेगा हर प्रकार से, उनका जितने इंद्रिय हैं, जो कुछ शक्ति सामर्थ्य बुद्धि वृत्ति है, हर प्रकार क्रिया, हर प्रकार प्रचेष्टा से केवल मेरा भजन, मेरा स्तुति, मेरा प्रार्थना करेगा और कुछ नहीं। बाकी बोलेंगे ये सब करेंगे तो हमारा पेट पटना कैसे चलेगा, संसार परिवार एक कैसे चलेगा, केवल यही करे तो ये हमारा ही, जैसे मूर्ख लोग है हमारा ही संसार, शंका इस प्रकार होता है। तो संसार में हमारे जैसे बड़े बड़े और पड़े हैं सभी यही संसार, अब सभी भगत बन जाएगा तो काम कैसे चलेगा, कभी लोग यही पूछते हैं। अगर सचमुच से भक्त बन जाए तब तो ये धरती साक्षात भगवत धाम बन जाएगा। अब भगवत धाम में ना भूख होता है, ना व्याधि होता है, ना ऐसा कुछ है ही नहीं, ये सब छूट जाएगा। ये जो प्रकार जिसके लिए हम संशय करते हैं, कैसे पेट भरेगा, कैसे काम चलेगा, ये कुछ होगा ही नहीं, ना सोचती ना कांक्षती, ये सब तो खत्म हो जाएगा। हम जेल में पड़े हैं इसलिए हम कष्ट भोगने ऐसा लग रहा है, ये रहेगा ही कहां। अगर हर कोई भक्त बन जाए तो भी टेंशन ही खत्म, ये पेट का तमाशा ही खत्म हो जाएगा, रहेगा ही ना भूख ना प्यास ना कुछ नहीं रहेगा। तो बात है कि यहां तो सब भक्त बनेंगे नहीं, हम सब कह दिए हैं श्री सीनिताय गौर सुंदर की, श्रीनारायण स्वयं भगवान की, तो बनेंगे नहीं हम, कस्मिन काले बन भी नहीं सकते हैं। और जब भी हम फिर भी बोलते हैं कि मैं नहीं काम करूंगा तो मेरे कैसे ये होगा, कैसे ये होगा, कई प्रकार प्रैक्टिकल बात करते हैं, तो भगवान कहते हैं कि जो मूढ़ है ये सोचता है कि सब काम वही करता है, मैं करता हूं ये बात कौन समझता है, प्रकृति है क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः कर्तारम्, जो मूड है वही बोलता है मैं ही करता हूं। फिर भी साधु संत लोग कहते हैं कि ठीक है, ये भगवान तक कहते हैं कि आप कुछ नहीं कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम काम नहीं करेंगे, क्या हमारा पेट भर जाएगा, हमारे लड़के का ट्यूशन फीस भर जाएगा, हमारे रूम का किराया भर जाएगा, बिजली का फीस भर जाएगा। तो चाणक्य पंडित जो पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध है नीति शास्त्र के रूप में, पॉलिटिशियन के रूप में, उन्होंने उनके सूत्र में आद्य में एक स्तुति किए हैं भगवान को। उन्होंने कहते हैं चाणक्य पंडित, का चिंता मम जीवने यदि हरिर विश्वम्बरो गीयते, मेरा जीवन में काहे को मैं चिंता कर रहा हूं, इतना टेंशन काहे को उठा रहा हूं, यदि काहे को चिंता नहीं करेगा ना, यदि हरिर विश्वम्बरो गीयते, यदि हरि अपने आप को सारे जगह में एडवर्टाइज करते हैं, मैं ही सबका पालनहार हूं, मैं सबको पालता हूं, पोसता हूं, बचाता हूं, खिलाता हूं, पिलाता हूं, मैं सब करता हूं और कोई नहीं कर रहा है, तो हम काहे को टेंशन उठाते कि मैं नहीं करूंगा तो होगा नहीं, मैं नहीं करूंगा तो होगा नहीं। तब विपक्ष लोग कह, अरे आप कह देने से थोड़ी होगा, आपके पास कोई प्रमाण है, ऐसे कह देने से थोड़ी चलेगा। तो पंडित जी कहते हैं प्रमाण बताता हूं सुनिए, कथं नो चेदर्पक अर्थे जननी स्तनं निस्सरेत, आप बताए तो सही, कैसे एक नवजात शिशु, एक छोटे बच्चा अगर पैदा होता है उसके लिए उनके मां के स्तन से दूध कौन भर देता है, कहां से आया, जो मां अभी संतान पैदा करती है वो संतान पैदा करने से 5-7 साल पहले उनके स्तन से और ऑपरेशन करके देखे दूध नहीं निकलेगा, ब्लड निकलेगा, तो अभी दूध कहां से आया, कोई इंजेक्शन देकर दूध तो भरता नहीं, हम जो खाते हैं राइस दाल चपाती वो भी वही खाते हैं, हम भी वही खाते हैं, तो हमारा तो दूध नहीं होता है, उनका दूध कहां से आया, कौन व्यवस्था किया, हम सभी बचपन में शिशु अवस्था में इस कार्य में गुजरे, सभी हमने मां के दूध पिए हैं, ना मां ये बात को सोचा है ना बच्चा इस बात को सोचा है, अभी तक तो कोई सोचते नहीं, हजारों लाखों करोड़ों शिशु मां के दूध पीते हैं, ना मां सोचता है कि मेरे स्तन से दूध कैसे आ गया, और बाद में बंद हो जाएगा अभी कैसे आ गया, ना बच्चा भी सोचता है, बताओ भगवान कैसे बड़े सुव्यवस्थापक है, कैसे परफेक्ट मैनेजर है, तो कैसे व्यवस्था करते हैं, हम क्या व्यवस्था कर पाएंगे उनके समान। जब एक जीव को उन्होंने धरती पर भेजते हैं, अब जीव जब आता है जन्म लेकर के इतनी असहाय अवस्था होता है, ना अपने बात किसी को बोल भी सकता है, ना किसी को बता सकता है अपने भावना, केवल रो ही भर सकता है, किसी लिए रोता है किसी को पता भी नहीं चलेगा, मां बाप को पता भी नहीं चलेगा क्यों रोता है, और उसके समय में उस खाने के लिए राइस दाल रोटी सब्जी कुछ खा भी नहीं सकता, तो उस जीव के लिए, उस नवजात शिशु के लिए जो आवश्यकता है, जो आवश्यक प्रोटीन, जो खाद्य है जिसके लिए, जिसको खाकर बचेगा, इससे पूर्ण व्यवस्थित लिक्विड जो मिल्क है, बिल्कुल प्रेस्क्राइब्ड जो आवश्यकता विटामिन आवश्यकता प्रोटीन मिला करके बटल में डाल करके निपुल सहित रेडीमेड अपने मां के गोद में फिट फिट करके रख देते हैं, बनी बनाई वो गोद में उठा ले, वही बनी बनाई निपुल सहित बटल रेडी है, अपने आप पिएगा, ऐसे बना के रखते हो, आने से पहले हमारे पास कोई अतिथि आ जाए, आने के बाद हम सोचते हैं अभी आ गए और क्या करें, कहां व्यवस्था करें रहने का प्रसाद का, सोचते हैं, लेकिन भगवान जो व्यवस्थापक हैं वो शिशु को भेजने से पहले ऐसे व्यवस्था करते हैं, जो मां के गर्भ से बच्चा आएगा वही मां के शरीर से बटल एंड निपुल एंड मिलकर फिट, आने से पहले वो गोद में ले रोते अवस्था में वही सुतृप्त होकर के उसे पिएगा, और जब तक उसका आवश्यकता रहेगा तब तक व्यवस्था रहेगा, उसके बाद व्यवस्था खत्म कर देंगे, जब सप्लाई की जरूरत तब सप्लाई देंगे, जब सप्लाई खत्म तब सप्लाई बंद कर देंगे। और हां मूर्ख, अभी तक कितने शिशु बनकर कितने शिशु मां के दूध पीते हैं, कोई नहीं सोचते इस बात को, चाणक्य पंडित इस बात को कहकर कहते हैं, इत्यालक्ष्य मुहुर मुहु हे जदपते कमलापते, चाणक्य पंडित इस बात को मैं बारंबार मुहुर मुहु सोचता हूं, सोच विचार करके मैं डिसाइड किया, इत्यालक्ष्य मुहुर मुहु हे जदपते कमलापते, मैं निष्कर्ष ले लिया, तब पादांबुज सेवनेना सदा कालम यानीयते, आपके चरण सेवा के अलावा मेरा जीवन में कुछ भी नहीं करूंगा, एक ही काम करूंगा बस। जब आप ही कर करते मैं जन्म होकर आने से पहले मेरे लिए व्यवस्था जब आप किए हैं तो अब नहीं करेंगे ना करते हैं, ये हमारे बेवकूफ ने सब विश्वास नहीं करते। जो हम जन्म होने से पहले हमारे व्यवस्था किए खान पान का, क्या अभी नहीं कर रहे हैं? ना करेंगे नहीं, अभी भी कर रहे हैं, लेकिन हम मूर्ख तथा कथित पंडित समझ नहीं पाते हैं, जान नहीं पाते हैं, गर्व करते हैं, हम तो देखे नहीं भगवान, भगवान दिखा सकता है भगवान हमको, ऐसे लोग कहते हैं। इस श्लोक में भक्त आर्यमा कहते हैं अनुपलक्ष्य अवस्थान आया, उनको लक्ष्य नहीं किया जा सकता, देखा नहीं जा सकता, उनको देख नहीं सकते, अलक्ष्य रूप में रहते हैं, बिहाइंड द कर्टन, पर्दा के पीछे रहकर काम करते हैं। आप अगर पुतली नाच देखे होंगे, पुतली के शो, आप पपेट शो देखे होंगे, पपेट शो में पपेट नाच करता है, धनुष बाण उठाता है, खड़ग उठाता है, पैर उठता है, नाचता है, कई बात करता है, लेकिन ये तो पुतली है, कैसे ये सब अंग प्रत्यंग उठाता है, नाच करता है, ये पुतली नहीं करता। पर्दा के पीछे कोई एक सूत्रधर है, वो धागा खींचता है, एक धागा खींचता तो पैर उठता है, दूसरी धागा खींचता तो मुंह खुलता है, दूसरी धागा खींचता तो हाथ उठता है, पर्दा के पीछे वो धागा खींचते हैं। जब वो सूत्रधर ना हो तो पपेट तो पपेटी है, कुछ भी नहीं कर सकते। सचमुच है हमारे अंदर गुण क्या है, कुछ भी नहीं जानते हैं, केवल भगवान के नाम के खाता में आ गए, एक भेष भेक बना लिए कि हम भगवान के भक्त हैं, इसी बहाना कर लिए, भेष पहन लिए, इसीलिए यहां के लोग भी बड़े बड़े मान्य गण्य व्यक्ति हम बुलाकर यहां बैठा दिए, नहीं तो क्या अवगुण के भंडार है, कोई योग्यता थोड़ी है हमारे अंदर। संसार में इतने बड़े बड़े विद्वान व्यक्ति पड़े हुए हैं, किनको इतना सम्मान करते हैं, लेकिन कोई गवार मूर्ख व्यक्ति भी अगर चिता चेतन कंठी माला कमंडल शिखा रखकर आ जाए, वो बड़े विद्वान व्यक्ति महाराज दंडवत पर छू लगा, क्यों? केवल इसी रूप को देख करके ये भगवान का है। केवल धोखे में कोई भगवान का बन जाए, भेष पहन ले थोड़े देर के, जब संसार बड़े बड़े विद्वानों को इतने सम्मान करते हैं तो क्या सचमुच भगवान का हो जाए? नहीं चलेंगे पलेंगे नहीं, हमारा विश्वास ही नहीं होता उसमें। भगवान अलक्ष्य में पीछे में रहकर हर कुछ काम करते हैं, सब कुछ वही करते हैं, लेकिन हम अंधे की तरह देखना चाहते, देख ही कैसे सकते हैं। महारानी कुंती श्रीमद भागवत महापुराण में प्रथम स्कंद में प्रथम स्तुति है महीयसी महिला कुंती की। भागवत ने जितने बड़े बड़े भक्त श्रेष्ठ सब स्तुति किए हैं, सबसे पहले सुखदेव गोस्वामी कुंती की स्तुति रखे हैं। कुंती की स्तुति में कुंती महारानी स्तुति जब करते हैं, प्रणाम करते हैं, देखिए भगवान सत्य संकल्प है, भगवान कोई चीज करने के लिए डिसाइड करे, इच्छा करे, तो ऐसे कोई शक्ति नहीं कि उसको रोक सके। भगवत इच्छा हरि इच्छा बलवान, भगवान इच्छा करके महाभारत संहार युद्ध में सभी को संहार करके युधिष्ठिर को राज्य में राज सिंहासन में अधिसीन करा करके, समझा बुझा करके, सब कुछ करके अभी घर से विदा लेकर जा रहे थे। वो सत्य संकल्प श्री भगवान है, वो जा रहे हैं, रथ में बैठ चुके थे, गाड़ी में बैठ करके, गाड़ी चलने ही वाला था, टाटे बाबा हो चुका था। महारानी कुंती दौड़कर गई, देखिए और जाकर के भगवान को जाकर प्रणाम करने लगी। अरे अभी तक कितने बार कुंती देवी को भगवान मिले, उनके पैर छूते हैं, बुआ जी प्रणाम है। अब कुंती देवी दौड़कर जाकर बोलते नमस्ते पुरुषम स्वाद्यम ईश्वरम प्रकृति परम। भगवान मोड़कर देखे, बुआ ये क्या कर रहा है, मुझे क्या प्रणाम करने लगी, ये कौन सा उत्पटांग बात है, आप मेरे बुआ ये क्या कर रहे हैं? नहीं 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 नहीं, आज तो मैं सही बात बताने जा रहा हूं, अभी तक जो नाटक नाटक चल रहा था, अभी मैं सच्चाई बता रहा हूं, छोड़कर मुझे जा रहा है, इसी के लिए सब काम कर रहा था। नहीं नहीं, हमको राज्य संपदा संपदा ये सब धन संपत्ति नहीं चाहिए, जिसको देकर के आप हमसे छोड़कर जाए हम ये नहीं चाहते, हमको विपद भले चाहे, ये सारे कष्ट विपद सब कुछ हमको चाहिए जिसमें आप हमारा साथ रहें, ये विपद से क्या मतलब है? हाँ हमारा साथ रहे वही हम चाहते हैं, और हमको धन संपत्ति राज्य दे करके आप चले जाए हम ये नहीं चाहते। कुंती देवी आकर सच्चाई बोल दी तो भगवान ने अपना संकल्प तोड़ दिया, वापस रह गए, गए नहीं फिर। बोले ये तो पोल खोल दिया हमारा, अब तो उनके सामने हमारा डाल नहीं गल रुक गए, नहीं तो भगवत इच्छा कभी रुक नहीं सकता। लेकिन भक्त के सामने जो सच्चाई आ गया समझ चुप ठीक 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 रहता अब ज्यादा मत। तो कुंती देवी इस श्लोक को प्रथम प्रणाम में कहते हैं, नमस्ते पुरुषम ताद्यम ईश्वर प्रकृति है परम अलक्ष्यम सर्वभूतानाम अंतर बहिर अवस्थितम। सारे प्राणी के सामने आप नजर में नहीं आते हैं, यद्यपि अंतर और बहिर अवस्थित सबके अंदर भी है सबके बाहर भी है, कोई ऐसा जाया नहीं जहां पर आप नहीं है। बताओ कोई पूरे संपूर्ण ब्रह्मांड में कोई ऐसी जगह बता दीजिए जहां भगवान की सत्ता ना हो, भगवान ना हो, हैं? अंतर बहिर अवस्थितम, सभी चीज सभी अणु परमाणु तक अंडांतरस्थ परमाणु चांतरस्थ अंतरस्थ हर कोई चीज के अंदर और उसके बाहर दोनों जगह व्यवस्थित है, लेकिन हमारे जैसे मूर्ख देख नहीं सकते। क्यों देख नहीं सकते? न माया जवनिका छन्नम, माया के पर्दा हमारे सामने पड़ा हुआ है। न लक्ष्य से मूढ़ नटो नाट्यम धरोज था, भगवान ड्रामा कर रहे हैं ऐसे पोशाक पहन कर नाटक कर मंच पर आ जाते हैं हम तो मोहित हो जाते हैं, अरे ना ना ये थोड़ी है, अरे वही है। ऐसे मोहित करते हैं कि बड़े से बड़े भक्ति भगत भी नहीं पहचान सके। दो दो पर्दा भगवान गीता में कहते हैं, नाहं प्रकाश सर्वस्य जोग माया समाप्त है। भगवान के ऊपर सामने उनके अपने तरफ से एक पर्दा डाल रखे हैं, अपने मुख के सामने जोग माया का पर्दा, वो हमारे सामने महामाया के पर्दा माया जवनिका, ये दो पर्दा हमारे सामने है, ये दोनों नहीं खोलेगा। हम अपना पर्दा खोल दे तब भी नहीं दिखा पड़ेगा, और एक पर्दा उनकी तरफ से, भगवान अपना पर्दा नहीं खोले तब भी नहीं मुंह दिखाई पड़ेगा। तो दो दो स्क्रीन है हमारा सामने, एक हमारे बस पर है एक उनके बस पर है, उनको हम नहीं कर सकते तो कैसे दिखें? दिख नहीं सकते। लेकिन इतने दो दो पर्दे के अंदर रहकर भी भगवान आते हैं, अलग अलग रूप में अलग अलग स्थिति में अलग अलग प्रकार आ जाते हैं। क्या बात कहूं, केवल मूढ़ नहीं, मूढ़ तो सचमुच भगवान को जानता नहीं क्या देखेगा। अरे विद्वान से विद्वान जो भगवान के भजन करने में अति प्रगत भक्त है, अति सर्वश्रेष्ठ शुद्ध भक्त है, वो भी भगवान के माया से मोहित हो जाते हैं। भगवान जब दिखाना नहीं चाहेंगे कौन माई के लाल है दिख सकता है। एक भक्त थे हमारे गौड़ीय परंपरा के सर्वश्रेष्ठ प्रथम आचार्य श्री माधवेंद्रपुरी पाद, जो चैतन्य महाप्रभु जिसको कहते हैं कि वो हमारे प्रेम संप्रदाय के मूल आधार है, भगवत प्रेम के मूल आधार है, मुख्य ये प्रेम वृक्ष का मुख्य क्या कहते हैं इसको जो पेड़ का स्कंद है। तो उन्होंने जब श्री वृंदावन धाम में आए थे एक बार, और भजन के परिपक्व अवस्था में थे, और उनका एक वृत्ति था अजाचक वृत्ति, कभी किसको कुछ नहीं मांगते थे, याचना नहीं करते थे। उन्हें जब पहुंचे वृंदावन में पहुंचे, जमुना स्नान किए, पैदल में चलते चलते गए गिरिराज गोवर्धन, जाकर गिरिराज जी की परिक्रमा किए। तभी गिरिराज जी की परिक्रमा शॉर्टकट नहीं था, बहुत बड़ा लंबा परिक्रमा था, वो तो किसी को मांगते नहीं थे, कोई दे तो स्वीकार करे नहीं तो नहीं। भूखे वृद्ध अवस्था में पूरा परिक्रमा लगाए, थके गए थे भूखे प्यासे में, और गोविंद कुंड के पास पेड़ के नीचे बैठ करके भजन किए। उनका वृत्ति है किसी कुछ मांगेंगे नहीं, और भगवान सामने ग्वाला बन करके आ गए, गोपाल के लड़का बन करके दूध की मटका लेकर आ गए। अग्रु बाबा क्यों बैठा है, दूध लो पी लो। बाबा उठ के देखे, बोले लाला क्या है, ना दूध पियो लेकर के, ना तुझे किसे पता चला मैं भूखा हूं? ना मुझे नहीं पता था, मैं तो गया लेकर गया था, वो गांव के माताजी लोग आए थे कुंड में, वो देखकर जाके बताया कि बाबा आकर बैठा है, खाया नहीं पिया नहीं, हमारा गांव में कोई भूखा नहीं देता, कोई आता है तो मांगकर खा लेता है, जो आपके जैसा हटी है मांग के नहीं खाता, उसके लिए मुझे आकर खिलाना पड़ता है। भगवान सुनत रुक गए, अरे रे रे मैं क्या बोल दिया, हल पकड़ा तो नहीं जाऊं? तो माधवपुरी गौर से देखने लगे, जब देखने लगे भगवान बोले ये भी पोल ना खोल दे, अब जल्दी करना पड़ा। बोले बाबा लो मुझे समय हो रहा है, शाम हो रहा है, मुझे गाय निकालना, दूध निकालना है, धान निकालना है, फट से मैं आकर बर्तन ले लूंगा, देकर भाग गया। क्योंकि ज्यादा टिकते थे माधवपुरी को पकड़ लेते, उनको पहचान लेते। लेकिन फिर भी इतने समय देखे, बातचीत हुआ, लेकिन पहचान नहीं पाए। जब वो नहीं पहचान पाए, उनके सामने आकर के उनके बात भी किए, दूध मटका दे करके बोल करके चले गए, तो हम कौन सा गाय के गोबर है? भगवान को देख के समझ ले, किस रूप में ना जाने हमारा सामने भगवान आए, हमसे बातचीत भी करते होंगे, कुछ शब्द चलते होंगे, कैसे पहचाने उनको? नलख्य से मूढ़ सा, हम नहीं जान सकते। तो इसीलिए हमारे सामने केवल एक ही काम बाकी रह गया, किसी के लायक हम लोग नहीं है, तो इसलिए हाथ जोड़कर भगवान की केवल स्तुति मात्र, प्रार्थना मात्र कर सकते हैं, जो इस भागवत में हर दीप में बड़े बड़े जो समझदार व्यक्ति करते हैं, स्तुति करते हैं भगवान की। इस हिरणमय वर्ष में आर्य महादेव भगवान कूर्म की स्तुति करते हैं। भगवान कूर्म, भगवान की जितने अवतार हुआ है सबका एक एक स्थान है, रूप में रहते हैं। कोई कोई विशेष स्थान है जहां उनके लोग, उनके भक्त हम पूजा करते हैं। भगवान गीता में कहते हैं, यो यो यान तनु भक्ता श्रद्धया अर्चितुम इच्छति, जो जिस देवता का, जिस विग्रह का श्रद्धा के साथ अर्चना करना चाहता है, तस्य तस्याम अचलाम श्रद्धाम ददामि, मैं उनके अंदर उनके प्रति ऐसे ही श्रद्धा देता हूं, लो भजो उनको। तो कोई कूर्म के डिवोटी बनना चाहेगा, उनको वही हिरणमय वर्ष में भेज देंगे, जाओ कूर्मदेव की अर्चना करो। जो नरसिंहदेव का अर्चना कर जाए, जाओ हरिवर्ष में चले जाओ। भगवान राम के किंग पुरुष वर्ष में, अलग अलग स्थान निर्दिष्ट है, वहां पर भगवान अपना विशेष रूप से अर्चना स्वीकार करते हैं। कूर्मदेव साक्षात भगवान है, हम सोचेंगे रे कछुआ है, उनको कैसे स्तुति प्रणाम करे। हम राधा रासबिहार को देखकर जितने तन्मय होते हैं, जितने हमारा अंदर प्रेम के भाव सुख उठता है, उससे कई गुना ज्यादा वो कूर्म को देखकर प्राप्त करते हैं। उनका संबंध कूर्म के साथ ऐसा है, भले कछुआ के रूप में हो, लेकिन वो साक्षात भगवत विग्रह है। भगवान चाहे कुछ भी बन जाए, तो भगवान भगवान है। चाहे मछली बने, कछुआ बने, कुछ भी बने, सिंह बने, कुछ भी बने, भगवान भगवान है। और उनके साथ जिसका संबंध है, वो ही प्रेम के संबंध आज से रहेगा। इस धरती पर भी कूर्म स्थान एक है, जगन्नाथपुरी से कुछ दूर अब जाएंगे, जब चैतन्य महाप्रभु अपने लीला में सन्यास लेकर के जगन्नाथपुरी गए, सार्वभौम भट्टाचार्य को उद्धार किए, उसके बाद में दक्षिण भारत की यात्रा के बहाने में दक्षिण भारत को लोगों को उद्धार करने के लिए वो निकले। जब दक्षिण भारत के गश्त शुरू किए, सबसे प्रथमे वो निराचल से चल करके आगे चले, श्रीकाकुलम क्षेत्र है, तभी उड़ीसा के अंदर आता था ब्रह्मपुर के पास में, तो वहां पहुंचे कूर्म क्षेत्र में। भगवान तो साक्षात प्रेम पुरुषोत्तम विग्रह है, अरे 7.5 फुट 8 फुट लंबे चौड़े विग्रह, आजान लंबित भुजो कनकावदातो, चमचमाते पिघले हुए सोना की वर्ण है, आकर्ण लोचन है, पूरे शरीर तो ऐसे अनुपम सौंदर्य की छटा की क्या कहें। ऐसे कहते हैं कि भगवान हर अवतार में अपने अस्त्र लेकर आते थे, अस्त्र के द्वारा दुष्ट को दमन करते थे। भगवान चैतन्य महाप्रभु का अस्त्र क्या था मालूम है? वो विशेष अस्त्र लेकर आए थे जिसमें सभी को मार डालते थे, एक बार में बोल्ड आउट, एक बार में। ऐसा क्या अस्त्र था उनके पास में, कौन सा अस्त्र था जो एक मार मारने से खत्म कर देते थे? वो महामारण अस्त्र था उनके रूप छटा, उनके रूप, उनके अनुपम रूप सौंदर्य माधुर्य, जो एक बार जिसका दृष्टि, जिसके नजर महाप्रभु के ऊपर पड़ जाता था, बास क्लीन बोल्ड खत्म, कुछ भी नहीं रहा अंदर बाहर, खत्म, रिज जाएगा सारे बुद्धि वृत्ति विचार सब कंडम, खत्म हो जाएगा। हाथ उठा करके पागल की तरह हा कृष्ण करके नाचेगा। ऐसे ही अस्त्र से सबको दमन करते हुए महाप्रभु चलते थे, हाथ उठा करके, अति अपूर्व महाभाव है, आंख से आंसू की धारा बह रहा है, पूरे भावमय विग्रह है, हाथ उठाकर हरि नाम, कृष्ण 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 है, कृष्ण 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 है, ऐसे करते करते चल रहे थे। जो कोई दूर दूरांत से भी देखता था, एक नजर से ही खत्म, काम धाम छोड़कर उन्हें पीछे भागता था। असली कर्तव्य तो ही सब काम छोड़कर ही करना चाहिए था, वही कराते चले जाते थे। करते करते श्रीकाकुलम क्षेत्र में पहुंचे, भगवान तो सर्वज्ञ है, उनको क्या पता ढूंढ करके, हमको एड्रेस निकालना पड़ता है, फोन नंबर निकालना पड़ता है, वो कर्मक्षेत्र में जाऊं कैसे जाऊं क्या करूं, गाड़ी घोड़ा ट्रेन, भगवान कुछ नहीं, चलते चलते गए सर्वज्ञ, ठीक पहुंच गए कर्मक्षेत्र में, किसी को पूछते उस नहीं है, घूमते फिरते नाचते नाचते पहुंच गए कर्मक्षेत्र में। अब पहुंच करके खूब नृत्य किए, खूब कीर्तन किए। चैतन्य चरितामृत में ऐसे वर्णन आता है कि उनका उस गांव में सारे लोग आकर के इकट्ठा हो गए हजारे संख्या में, अरे साक्षात भगवान तो है ही, रोज वो कीर्तन करे तो फिर कौन उनको देखकर मोहित न होकर रहेगा, और कीर्तन करके सब स्तब्ध होकर देखते रहे। पूरी रात कीर्तन होने लगा, रात बिता जो महाप्रभु प्रणाम करके उठे, थोड़ा बाह्य हुआ तो उनका कुर्म विग्रह के एक मुख्य से पुजारी थे जिसका नाम ही कुर्म था, एक वैदिक ब्राह्मण थे, उन्होंने आकर महाप्रभु को निर्मल पैर छुआ, प्रणाम किया, बोला प्रभु हमारा घर में आज भिक्षा लीजिए। तो बोले ठीक है चलो, तो लेकर गया सौभाग्य साड़ी ब्राह्मण उनके घर में, महाप्रभु के चरण धोया, चरणामृत पिया और प्रसाद खिलाया, महाप्रभु को रेस्ट कराया। तो उन्होंने अलट चामर करते हुए महाप्रभु जो फिर विदा लेते हुए तो हाथ जोड़ करके बोलने लगा, वो कुर्म विप्र, उनका नाम ही कुर्म ब्राह्मण था इस कुर्म क्षेत्र में। प्रभुपाद जी ने जब चैतन्य चरितामृत में इस प्रसंग लिख रहे हैं, तात्पर्य बात कह रहे हैं कि श्रीपाद रामानुजाचार्य जब उनके लीला में थे तो उन्होंने एक बार जगन्नाथपुरी आए थे, उन्होंने जब पूरे दिग्भ्रमण करते थे, सारे जगह में जाकर के अपने भक्ति के सिद्धांत का प्रचार कर रहे थे, तो जगन्नाथपुरी में आए थे तो श्री संप्रदाय के जो आचार प्रचार विचार प्रणाली है जगन्नाथपुरी में, तो पंडा लोग जो पूजा करते सारे मूर्ख है, अपने हिसाब से पूजा वूजा करते रहते हैं, तो उनको देख करके बोले साक्षात दारु ब्रह्म है ये पुजारी लोग, यार ढंग से नहीं पूजा कर रहे, सिस्टम सब चेंज करना होगा। बोले ये ठीक विधि विधान नहीं है। तो डांटे, वो तो इतने बड़े विद्वान थे, उनके सामने कौन, कोई पंडित उनके सामने टिक नहीं सकता। तो पंडित पुजारी लोग भगवान के सामने जाकर बोले कि ये कहां से आ गया पंडित, तो हमारे दाना खत्म करेगा, राजा से कंप्लेन करेगा, तो हमको क्या ट्रेनिंग सिखाएगा, हम तो जानते नहीं, हम तो जन्म से आपको ऐसी पूजा करते आए, हमको पता नहीं ये क्या बोलता है, सब चेंज चांज कराएगा, सब सिस्टम नया रोल नियम लागू कराएगा। सब आकर ठाकुर जी के पास रोने लगे। जगन्नाथ बोले कि चिंता मत कर रहे, आप रहो, मैं आपका पूजा लेता हूं, क्या करेगा। और सब हमको निहुरा करके चले गए। श्रीपाद रामानुजाचार्य अपने शिष्य के साथ रात्रि में विश्राम कर रहे थे। सुबह मंगलारती से पहले आचार्य उठ कर आते थे, एब्सेंट आज मंगलारती में आए नहीं। उसके बाद में गुरु पूजा होगा जो होगा उसमें भी गुरु तो आते ही नहीं, आए ही नहीं, कौन कबाट खोले, कैसे करे, कैसे दिखे, बहुत लेट हो गया, सब मिलकर जाए खोले, है ही नहीं, आचार्य ही गायब, अंतर्ध्यान है ही नहीं थे। पूरे सब लोग सोचने लगे कहां गए पता नहीं चला। कुछ दिन के बाद में पता चला जगन्नाथ जी उनको रातें रात उनको भेज दिया कुर्मक्षेत्र में। तो कैसे भेजे भगवान है सब, उनको यहां से उठा करके पूरे ओवरनाइट वहां से कौन सा फ्लाइट बुकिंग किए क्या किए पता नहीं, वहां से उठाए और यहां लैंडिंग करवा दिया कुर्मक्षेत्र में। उनको ही पता नहीं चला स्वयं को। सुबह उठकर के आचार्य से देख रहे हैं कि ये कौन सा जगह है, ये तो मेरा कमरा नहीं, बेड नहीं, कुछ नहीं, कोई नहीं, शिष्य सेवा कोई नहीं है कुर्मक्षेत्र में। और जो विग्रह देखे कुर्म विग्रह को, वो सोचे ये तो भगवान शिव के विग्रह, शिवलिंग है सर। तो रामाचार्य का एक नियम था कि जब तक विष्णु की उपासना नहीं करे तब अन्न जल नहीं ग्रहण करते थे, जल विस्पर्शन नहीं करते। तो बोले फास्टिंग करके रहे। बोले ना, जब तक मैं आराध्य देव की उपासना नहीं करूं मैं कैसे खा सकता हूं। तब कुछ समय जो फास्टिंग हुई उसके बाद वह ठीक से जाकर देखे, अरे ये तो साक्षात कुर्म विग्रह है, कुर्म भगवान को दृष्टि दर्शन दिए वो देखे। तो उन्होंने एक भव्य मंदिर निर्माण किए, पूजा वूजा का व्यवस्था की। तो जगन्नाथ जी ने बोले मेरे पूजा वूजा करना जरूरत नहीं, उसको उनको करो, वो बैठा है कोई उनको पहचानते नहीं। कुर्म विग्रह के प्रकाशन, उनके पूजा के प्रतिष्ठा सब कुछ श्रीपाद रामानुजाचार्य किए। तो उसके बाद में स्वयं भगवान जो सारे अवतार के अवतारी हैं वही गौर विग्रह जाके उनके सामने आज नित्य कीर्तन करके पड़े हैं, और उस गौरव विग्रह के जो मुख्य पुजारी उनको सेवा करके प्रार्थना कर रहे हैं। एक प्रार्थना कुर्म विग्रह महाप्रभु के सामने किया कि हे प्रभु कृपा करो, प्रभु मोरे जाओ तुम्हार संगे, सहित न पारी दुख विषय तरंगे। हे प्रभु आप कृपा करके मुझे इजाजत दीजिए, मैं आपके साथ जाऊं और मैं घर में रहने की इच्छा नहीं। एक घंटा के दो घंटा उनके घर में महाप्रभु आ गए, खा करके थोड़ा विश्राम कर निकलने वाले थे। इतने में ही इतने उनको कन्विक्शन आ गया कि वो हाथ जोड़ के बोलता है कि प्रभु मुझे इजाजत दीजिए, मैं घर द्वार छोड़ के जाऊं। सहित नपारी दुख विषय तरंगे, मैं और सहन नहीं कर सकता हूं ये संसार के जो दुख, ये विषय के जो वेग, उसको मैं और सहन नहीं कर सकता हूं, ये दुख नहीं सहन कर सकता हूं। प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में लिखते हैं कि उसके पहले भी कहा था, जब महाप्रभु के चरण धोया उन्होंने, बोलता कि आज मेरा कुल, मेरा धन, मेरा जन, मेरा शील, मेरा सब आज कृतार्थ हो गया। प्रभुपाद जी इसको उदाहरण लिखते हैं कि वो जो कुर्म विप्र था, बहुत बड़े धनी विप्र था, बड़े सुखी था, सब प्रकार से संतुष्ट था, सब प्रकार के धन धान्य पुत्र संतान सब कुछ था उनके, हर प्रकार के वो ठीक ठाक था, लेकिन फिर भी वो बोलता है कि सहित नपारी दुख विषय तरंग, ये दुख विषय के आवेग में सहन नहीं कर सकता, कृपा करके मैं आपके साथ चलना चाहता हूं। प्रभुपाद जी उसके तात्पर्य के पहले लाइन में लिखते हैं, ये जो प्रार्थना सभी के लिए प्रयुज्य है, हम सब दुख के लात खाते हैं, जी भर के खाते हैं, हर दिन हर समय हर क्षण खाते हैं, लेकिन हमको पता नहीं चलता। वाह बढ़िया लगता है, जैसे ऊंट है राजस्थान में, रेगिस्तान में ऊंट जाता है और जो कांटेली पेड़ होता है उसको चुबाता है, कोई दिन बड़े दिन के बाद खाना पीना तो छोड़कर एक बार जो खाता है, बड़े भूखे प्यासा होकर के कांटेली पेड़ को कांटा को चुबाता है, उनका थोड़ ऊंट सब कांटे से छिल जाता है, सब ब्लीडिंग होता है, रक्त निकलता है, बोलते हो क्या सल्टी है, क्या टेस्ट है, रक्त थोड़ा नमकीन लगता है ना, बोलते क्या टेस्ट है यार, बढ़िया टेस्ट है। हम इसी प्रकार लात ही खाते रहते हैं सुबह से शाम, शाम से सुबह, लेकिन बोलते वाह कितना अच्छा है, यही रहेंगे, और विचार बनाते हैं, प्लान बनाते हैं, कितने कितने योजना बनाते हैं यहां रहने के लिए। भगवान बोलते मेरे पास आओ, अच्छा वहां क्या है, ये है, इतनी बढ़िया है, इतनी व्यवस्था है, अच्छा है, जाने के लायक तो है, लेकिन कब तक रहेंगे, जाकर आ सकते हैं? भगवान बोले नहीं, वन वे टिकट, आने से फिर नहीं जा सकता, नहीं हम नहीं जाएंगे, यही हमारा अच्छा, हमारा यही अच्छा है। एक प्रीचर मुझे बोल रहे थे, बोले एक स्थान में गए फिशिंग करने के लिए, जाके उनको प्रचार किए, बोले देखो प्रभुपाद जी ने प्रचार में सबसे पहले बोले कि हमारा संस्था में जो आते हैं चार नियम पालन करते हैं, चार पाप से बचते हैं, क्या क्या चार नियम है ना, देखो कोई अखाद्य नहीं खाना, मांस मछली अंडे ये सब नहीं खाना, कुछ प्रकार का नशा नहीं करना, हाँ, और जुआ सट्टा आदि नहीं करना, और असंग अवैध संग नहीं करना। तो व्यक्ति ने बोला महाराज जी हमारे जो अफसर है वो तो ऐसा करते हैं ना, आप भी नरक जाएगा, वो भी नरक जाएगा ना, हमारे वो इसे कर रहे हैं, वो इसे, जितने उनका परिचित, जितने उनका सब दोस्त, सभी का नाम बताया, सभी इसे कर रहे हैं ना, सब नरक जाएंगे ना। महाराज हमको क्यों बोल रहे हैं जाने के, जो सभी हमारे परिवार सब बंधु वर्ग सब नरक में जाएंगे, तो हम दूसरे जा क्यों जाएं, हम ही वही जाएंगे, हम दूसरे जा क्यों जाएंगे। तो ऐसे व्यक्ति को कैसे प्रचार किया जा सकता, असंभव। जो सचमुच सोया हुआ है उसको कोई जगा सकता है, लेकिन जो सोया नहीं सोने का अभिनय कर रहा है उनको साक्षात भगवान ही नहीं जगा सकते, तो जगा है, नाटक कर रहा है सुने। तो इसी प्रकार हम लोग को कौन समझाएगा, दुखे सुख मानिना, हम जो दुख को सुख मानते हैं तो हमको किसी प्रकार से भक्त नहीं बना जा सकता। भगवान गीता में कहिए भक्त बनने का सबसे प्रथम प्रिंसिपल है जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषा अनुदर्शनम, ये दुख है ये दोष है, बारंबार उसको देखो समझो तब जाकर के आगे कुछ बढ़ेंगे। पहला कड़ी तो वही है, पहले समझो कि हम दुखी हो, हम कष्ट में है, दुख में है, अगर उसी को हम नहीं समझेंगे तो आगे किसे बढ़ेंगे, हम बोलेंगे हम ठीक ठाक है फिर कहीं जाए कैसे, हमारे ऐसे दशा है। लेकिन फिर भी आचार्य गण की महती कृपा है, हम जैसे बद्ध जीव कोई ला करके चोटी रखवा दिए, कंठी बंधवा दिए, ड्रेस उतरवा दिए, थोड़े बहुत ऐसे ही धोखा में आकर के हम यहां आ गए, फिर भी भागवत आदि पढ़ने के लिए साहस कर रहे हैं। तो इसी अवस्था में भी जाने न जाने, समझे न समझे, किसी भी प्रकार से अगर भगवान के सामने हाथ जोड़ के स्तुति कर लेते हैं, प्रार्थना कर लेते हैं, प्रार्थना करना तो आता नहीं, जो प्रार्थना किए हैं उसको दोहरा लेते हैं, दोहराना भी बात नहीं, अगर सुन लेते हैं श्रोतव्य, अगर सुन में नहीं बोले वो भी नहीं कर रहे, अरे थोड़ा सोच तो लो, ध्यान तो कर लो। अभी ध्यान भी नहीं कर सकते कुछ नहीं तो प्रणाम एक बार कर लो, तब भी काम बन जाए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, प्रणामे दुख समनम। केवल प्रणाम मात्र से हो जाएगा। अगर प्रणाम भी नहीं कर पाया, जो लोग ऐसा करते हैं भजन कीर्तन प्रणाम करते हैं, वो अनुमोदन कर लो, वो लोग अच्छे हैं, तब भी आपका काम बन जाएगा, तब भी काम बन जाएगा। हरे कृष्ण। अभी समय हो चुका है, किसका कोई शंका या कोई कमेंट? बोलो। हाँ हाँ है, आपका कहना क्या है? हाँ, उत्तरा की स्तुति नहीं की, आप क्या भागवत पढ़ते, आपको समझा नहीं, उतना प्रार्थना क्या था, स्तुति कुंती किया था, है ना? नहीं, अंतर आप जाके समझो। भागवत में प्रथम स्तुति केवल कुंती महारानी की है, उसके पहले उत्तरा ने विपद में एक बार प्रार्थना की थी, एक श्लोक वैसे। हरे कृष्ण। और कोई ग्रंथराज श्रीमद्भागवत महापुराण की, संवेद भक्त वृंद की, श्रील प्रभुपाल महाराज की।